त्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण राम दासी आनंद धिन्नतो ने मनोरा मन बच क्रम जन धरे परमारते पुन्न पीवक कपूरा एक हम काज उपकार ते लोक को श्रवण भी प्राण सन्नाय सूरा पर गुणा काद परवाण परबत जी दुख संताप ते जाय दूरा साध अन्नाद कीरत श्रवणा सुनी धिन्नतो ने मनोरा नेमीचंद नित्य प्रति जो पक्षियों को अनाज डालने का नियम रखता है उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक बार हंस रूप में कोई सत्पुरुष उस राजा के उस नेमीचंद के यहां पर पहुंचे। जैसा सुना नेमीचंद ने उसी प्रकार सम्मान सत्कार किया पक्षियों का, इससे प्रसन्न होकर के हंसजन कहने लगे हैं, धन्य भैया तुम वास्तव में धन्य है। मन वचन कर्म से परमार्थ करने का तुमने जो व्रत लिया है ये वास्तव में सच्चा अमृत है जीवन के लिए। परमार्थ को सत्पुरुषों ने पारस बताया है, जिस पारस के द्वारा परमार्थ करते हुए प्राणी सहज में कल्याण कर सकता है। स्वार्थ भाव से रहित होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा परायण होना, दूसरों की यथाशक्ति सेवा करना, यही परमार्थ का स्वरूप होता है। जिसको कहा है परमार्थ पार्षद परमार्थ पूर्ण नदी राम सरोवर जाए, दयावंत झूले अवश्य कलमश तीन मिटाए। दयावान प्राणी होता है वही इस परमार्थ रूपी सरोवर में नदी में स्नान कर सकता है। साध अन्नाद कीर्त श्रवणा सुनी, जो अनादिकालीन सत्पुरुषों की महिमा है ऐसे सत्पुरुष ही वास्तव में संसार में फैताया करते हैं। अब नेमीचंद जी ने जवाब दिया, महाराज आपकी महिमा आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता। अब जन आगम प्रभाव सदाई, आसन वास भाव सदाई, गृह आश्रम कृतार्थ तभी धार्थ अनुसरण में तभी। मैं तो इतना जानता हूं कि गृहस्थाश्रमी के यहां पर अगर कोई सत्पुरुषों का आगमन होता है तो उसके भाग्योदय के लिए हुआ करता है। उसके भाग्योदय के बिना कोई महापुरुष किसी भी गृहस्थ के यहां पर पहुंचते नहीं है। अब जब सत्पुरुष वहां आ जाते हैं तो उन सत्पुरुषों के स्वागत के लिए उस गृहस्थी का कर्तव्य होता है, गृह द्वारा जिसके लिए बताया गया कि उसका कर्तव्य होता है उनका पूर्ण हृदय के भावों को लेकर के उनका सम्मान करे, उनकी सेवा करे, उनकी चाकरी करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। अब आप सत्पुरुष यहां पर पधारे हैं, मैं आपकी शरण में हूं और शरण होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपा करके मम अनुमान लीजिए भोजन, जैसा मैं आपको भोजन करा सकता हूं उस प्रकार आप मेरा भोजन स्वीकार करें। अब भक्त हंस सोचने लगे, अब इसने मनवार की है, इस मनवार को ठुकराना उचित नहीं है। राम प्रताप अगाध सदाई, करता अगम साध के माई, अपनी कीर्त आप ही जाने, सिमरण तलब और सुनवाने। भैया तुम यदि सम्मान करना चाहते हो तो तुम जानते हो हमारा नियम, तो हम केवल मोती के सिवाय दूसरा कुछ चुग्गा तो लेते नहीं, और जो जैसी तुम्हारी इच्छा हो जितना तुम ला के दे सकोगे उतना है उतना हाजिर कर दो, हम तुम्हारे प्रेम की प्रसादी को पालेंगे जो हाजिर हो बस। संत महात्मा ये नहीं कि इतना नया लेकर के आओ उतने से उतना ही लेंगे, नहीं, जितना हाजिर है बस उसी को हम भगवत प्रसाद मान करके पालेंगे, आप अपने हिसाब से सेवा करो। तो राम महाराज का प्रताप अगाध है, ये वो मन में सोच रहे हैं कि जिस जो सेवा भावी है वो सेवा भावी के भाव को परमात्मा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं, कि उसकी भावना प्रबल है सेवा करने की, तो भावना प्रबल होती है तो योग्यता दे करके परमात्मा स्वयं उसकी सेवा को अपना सहयोग प्रदान कर देते हैं। अब हंस उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और वहीं वृक्ष के ऊपर बैठ के विश्राम कर लेते हैं। महाजन जो थे वो वहां से नेमीचंद रुपया पैसा कुछ घर में जो भी संपत्ति थी वो लेकर के बाजार में गया। खर्ची दाम बिणज सब माला, वह सामान जो कुछ था साथ में लेके गया, बेच दिया। सामान बेच करके अब उससे जो रुपए मिले उन रुपयों से वो मोती खरीदने के लिए गया। मोती खरीदने के लिए गया तो वहां से वो मोती खरीद करके लाया। मोती खरीदे हंसों के लिए तो उसने सवा चुगा चुगाना है, नहीं तो सवा दो पक्षी आए हुए हैं तो दो के लिए कितना हो गया, सवा सवा शेर, सवा शेर ढाई शेर, तो ढाई शेर चुगा दोनों को चुगाना है। तो ढाई शेर मोती खरीद के लेके आया, अपनी सारी संपत्ति बेच दी। आए हुए मेहमान उनको सवा चुगा चुगाना है, ये उनका नियम था शुरू से पक्षियों को। तो अब शेर अढ़ाई मुक्ता लायो, हंसा को प्रसाद करायो। ढाई शेर मोती लेकर के आया और बड़े श्रद्धा भाव से उसने हंसों के सामने रख दिया। भगवान ये प्रसाद आप पाइए और मेरा मनोरथ सफल कीजिए, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। कल तरसाद अगाध दया पुष फल मुगत ही पर उपकार जीवाद पाए जहां अंबर सदा। संत महात्मा रूपी अनोखा कल्प वृक्ष है के कल्प वृक्ष है, संत महात्मा एक अनोखे कल्प वृक्ष है। उनके दया रूपी फूल लगते हैं और मुक्ति रूपी उनके फल लगते हैं, ये सब पेड़ हैं संत महात्मा। दया रूपी तो फूल है और मुक्ति रूपी उनके फल हैं। परोपकार के लिए जीवित रहते संसार में, ऐसे कल्प वृक्ष जिनको मिल जाए वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। परोपकार जीवा जो परमार्थ के लिए जीवते हैं तो जिनको भी मिल गए वो निहाल हो जाता है सदा सदा के लिए, फिर कभी कोई कमी उनके पास में आती नहीं। और मिल तो जाते हैं, कभी मिलते नहीं, कभी मिलने पर भी पहचानते नहीं। हम लोग भूल जाते हैं जो हैं वास्तव में, लेकिन हम उनको ठुकरा देते हैं, मिले हुए हमसे दूर हो जाते हैं, ये हमारी नादानी का फल है। हर वीर का सर भाव हमें निज मन सी प्रसदाय गुरु समाज स्वायत नगत मुक्ता क्यों नहीं थाय। प्रकट शब्द वाणी गिरा अनुभव गुरु विज्ञान ये प्रभाव है आद को निर्फल कदे न जान। भाव रूपी सरोवर में निज मन रूपी सीपी है, सीप जिससे मोती पैदा होते ना, सीपी वो सरोवर में रहती है। तो सीपी है निज मन अपना, वो सीपी के समान भाव रूपी सरोवर में रहा करता है। मतलब जो हमारा सद्भाव है उसी में जो ये सीपी, उसी के द्वारा भगवान नाम रूपी जो वर्षा होती है राम नाम की, अब ये वर्षा भी गुरु कृपा गुरु शरणागति रूपी स्वाति नक्षत्र में हो तो मोती क्यों नहीं पैदा होंगे। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंद पड़ती है सीप के मुख में तो मोती पैदा होते हैं, ये सिद्धांत है। अब किसने देखा कैसे कब होता कौन जाने भैया, लेकिन सुनते हैं शास्त्रों के वचनों के अनुसार तो वैसे वर्णन किया है कि वर्षा वो मौसम में सीपी पे पड़ता है वो तो होता है मोती, केड़े पर पड़ता है उससे होता है कपूर, सांप के मुंह में अगर पड़ता है तो वो होता है जहर, और समुद्र में पड़ता है तो वो खारा पानी बन जाता है। एक बूंद चौं भाए तो ऐसे मोती पैदा होते हैं। तो मोती के उत्पन्न होने की तो यहां बताया भाव रूपी सरोवर है, मन रूपी उसमें सीपी है, और भगवान नाम राम नाम रूपी बरसात होती है, और वो बरसात भी गुरु महाराज के मुखारविंद से, गुरु महाराज के शरणागत होने पर उनकी कृपा से जो बरसात होती है वो है स्वाति नक्षत्र। एक तो वर्षा दूसरे टाइम में होती है और एक होती है स्वाति नक्षत्र में। तो इस स्वाति नक्षत्र की बूंद ही मोती बनती है, बाकी की बरसात की बूंद मोती नहीं बनती। तो गुरु कृपा से जो मंत्र है वो हमारे निज मन में प्रवेश करेगा तो भाव में वो मोती अवश्य पैदा हो जाएगा। तो ये बात बताए, हर वीर का सर्वभाव में निज मन सी प्रसदाय गुरु समाज स्वाय तिनकत मुक्ता क्यों नहीं थाय। प्रकट शब्द पानी गिरा, मोती में चमक होती है, चमक से ही मोती की पहचान होती है, कैसी चमक है उसकी। गुरु महाराज का अनुभव शब्द तत्व उस मोती में पानी अर्थात चमक तेज है। शब्द वाणी रूप में हमें उत्तम अधिकारी द्वारा उपलब्ध हो सकता है, ऐसा अद्भुत प्रभाव अनादिकाल से चला आता है, ये कभी निष्फल होने वाला नहीं है। अब वो मोती पैदा हो गया जो बताया अभी सीपी में, मन में मोती पैदा हुआ है, वो मोती पैदा हुआ है पर उसमें गुरु महाराज के अनुभव शब्द रूपी उसमें चमक है। जो महापुरुषों के अनुभव की हुई बातें हैं वे अनुभव की बातें हमें सुनाते हैं और उस बात का हमारे हृदय पर असर पड़ता है, वही उस मोती की चमक है, ध्यान रखना। अब या आप देखिए, जो ये तो अपने मन मर्जी से भजन करता है, एक गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त करके भजन करता है, तो इन दोनों में बड़ा भारी अंतर यह है कि इसमें अनुभव रूपी जो पहले से सदगुरु महाराज की हुई कमाई की बात मिलनी चाहिए वो गुरु मनमुखी को नहीं मिलती। मनमुखी तो अपना आप ही कर रहा है, बिना किसी के बताए बिना किसी के सुझाए आप मर्जी से जो करता है वो मनमुखी हो गया, और गुरुमुखी हो गया तो गुरु महाराज ने कह दिया, उनकी शक्ति इसमें काम करने लग जाती है। तो उस नाम में चेतन के द्वारा जो जागृति मिलती है वो चेतन की जागृति के द्वारा स्वयं दिव्य चेतन रूप बन जाता है। वो चेतन गुरु महाराज, तो गुरु महाराज जो चेतन के माध्यम से मिलने वाले अपने हृदय को चेतन कर देता है, इसलिए चेतन राम शरण में तेरी। परमात्मा चेतन रूप है, गुरु महाराज चेतन है, और लेने वाला शिष्य वो भी चेतन बनता है, ये तीनों की एकता होती है, तब वो जीव धन्य बन जाता है, अर्थात उसको पूर्ण रूप से सहज में जागृति हो जाती है। जड़ के द्वारा मिलने वाला ज्ञान, एक तो टेप रिकॉर्ड से कोई बात सुनते हैं, सुनकर के काम करते हैं, तो वो जड़ के द्वारा मिलने वाला ज्ञान हुआ, तो चाहिए ज्ञान हमारे को चेतन का, और मिलता है जड़ के द्वारा तो वो अधूरा ज्ञान रहता है, वो पूरा प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए अनुभव शब्द रूप तत्व उसमें मोती में चमक है, ये अनुभव उनके शरण में रह करके भजन करने पर ही वो चमक हमारे काम आएगी, अन्यथा हम उसका लाभ नहीं ले सकते। निर्फल पास में रहते हुए करेंगे तो निष्फल कभी नहीं होगा, ये भाव याद रखना। ये बात अंशों ने नेमीचंद को सुनाई, मतलब वो ये बात बताना चाहते हैं, भैया अब भगवान के साथ में अपना अखंड स्नेह जोड़े रखो, अपना मन प्रभु के चरणों में लगाए रखो, और गुरु महाराज का संग सदा किए चलो, गुरु महाराज को कभी भूलो मत, गुरु महाराज से कभी अलग मत हो, सदा उनके साथ में जुड़े रहो। कितने भी ज्ञानी बन गए हो, मान श्रेष्ठ बन गए हो, तो भी उनके साथ में संबंध को जोड़े रखो, उसको छोड़ो मत। कौन से टाइम में उनके कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ जाए क्या पता। एक गुरुजी के पास में एक शिष्य गया, वो पहलवानी कुश्ती सिखाए करते थे गुरुजी। शिष्य उनके पास में पढ़ाई करने के लिए गया, गुरुजी तो वयोवृद्ध बूढ़े थे, जब बड़ी चढ़ती उम्र में थे, और वो जवानी में था लड़का, उसने अच्छी विद्या सीख ली गुरुजी से, कुश्ती के दांव पेच सीख लिए, कई प्रकार के दांव पेच सीख करके, और वो होशियार हो गया, गुरुजी की पूरी विद्या उसने प्राप्त कर ली। अब वो एक दिन गुरुजी से कहे, महाराज अब आप तो यहाँ पर कुटिया में बैठे हो, मैं तो कहीं शहर में जाऊं तो अपने दंगल दिखा करके कुश्ती करके लोगों को पछाड़ करके विजय कमाऊं, जय जयकार कमाऊं, मेरी जवानी किस काम की आएगी। गुरुजी ने कह रहे, बेटा ठहर जा, अभी ठहर जा, और नेवालो और सीखने, अब विद्या तो सब सिखा दी, और क्या बाकी, कौन सी बाकी बची है, विद्या तो सब सीख ली, अच्छी बात है, तेरी मर्जी है, जाओ भाई कोई बात नहीं। चला गया, पहले आमोद प्रबोध के रूप में राजा लोग इस प्रकार दंगल का आयोजन किया करते थे, कुश्ती अखाड़े तैयार कर गए। एक राजा के यहां पर पहुंचे, वहां उस पहलवान की चर्चा चली। पहलवान ने कहा, मैं यहां पर अच्छी अपनी कौशल कला दिखाना चाहता हूं, कोई पहलवान हमारे सामने आए। अब दूसरे कई पहलवानों की बात तो आते आते राजा ने कहा, भाई मेरे तो गुरुजी है, पहलवान है, गुरुजी को तू यदि पछाड़ देगा, हरा देगा, तो मैं जानूंगा कि वास्तव में तो सूरवीर है, तू पहलवान है। हाँ, बुला लीजिए गुरुजी को। और गुरुजी वही ना गुरुजी वाला गुरुजी, एक ही गुरुजी हदीस, जो शिष्य के गुरु है वही राजा के गुरु। बुलावा भेजा तो गुरुजी को पता चला कि भाई कुश्ती के लिए बुलाया राजा ने, तो अब कुश्ती करनी किससे, को अनुमुख नाम बताया। अरे वो तो मेरे ही चेला है और उसको मैंने अपनी पूरी विद्या पढ़ा दी, पूरे दांव पेच सिखा दिए, कैसे कुश्ती करते हैं, कैसे हराया जाता है, कैसे पछाड़ा जाता है अगले को, तो मेरी पढ़ाई पूरी विद्या तो उसको पढ़ी हुई। अब मैं तो चढ़ती उम्र में और वो है जवान, अगर उससे कुश्ती करूंगा तो वो जरूर पछाड़ देगा, क्योंकि कला सब सिखा दी थी, एक आधी कोई बाकी नहीं रखी थी। सिंह और बिल्ली ने, बिल्ली के पास शेर गया विद्या सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए गया बिल्ली के पास शेर, तो सारी विद्या मुझे सिखा देगा, सब सिखा दी। अरे अपनी जितनी विद्या पढ़ा पढ़ोगे सारी बता दी, और शेर ने देखा विद्या तो सब पढ़ा दी, अब इसको झपटो दबोचो मार डालो। जो दबोचने के दबटा के बिल्ली चढ़ गई ऊपर, पेड़ के ऊपर कूद के चली गई। शेर ने कहा, तेने ये विद्या तो नहीं पढ़ी कि मरणो थोड़ी है विद्या पढ़ाता, मरणो थोड़ी है विद्या पढ़ाती थाने, मालूम है कहीं ना कहीं कुछ बात करे बिना को नहीं दे। तो गुरु जी ने सारी विद्या पढ़ा दी, दयालु संत होते हैं, अपने पास में है जो को भाई सब कोई ले जाओ, रामदड़ी चौड़े पड़ी। अब वह बुलावा भेजा है तो करे क्या। गुरु जी ने जिस समय वो बुलाने के लिए आए ने आदमी, उस समय गुरु जी अपने कुटिया में बैठे, एक कटोरा जो भी भोजन किया था वो हाथ में ले, मिट्टी उससे साफ कर रहे थे, कटोरा बांध रहे थे। गुरुजी ने उसने कहा, भैया तुम जाके राजा से कह दो कि अभी गुरुजी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करने के बाद में आएंगे, कटोरा पेज का अभ्यास कर रहे हैं, कटोरा पेज का, कौन सा पेज, कटोरा पेज, वहां जाकर के राजा साहब से कहा कि हमारे गुरुजी तो अभी कटोरा पेज का अभ्यास कर रहे हैं। वो चेला पास में खड़ा सुने, कटोरा पेज कौन सा है, गुरुजी ने बताया ही नहीं कभी, कटोरा पेज तो बताया ही नहीं कौन सा है, और ये कहीं वो आकर के मुझे कटोरा पेज से आराध नहीं दे। इसलिए राजा से कहा, राजन आज अब ये कुश्ती का दंगल रहने दीजिए, फिर बाद में कभी करेंगे। वो गुरुजी के पास में गया जाके, महाराज कटोरा पेज कौन सा है बताया तो नहीं हमारे को, ये कटोरा मांझ रहा हूं, ये कटोरा पेच है भैया, तो मुझे वहां पर बीच में ललकारने लगा नहीं, इसलिए इसी बहाने से मतलब ये दंगल नहीं हो, ये दांव से तुम्हें बिना कुश्ती की ही हरा करके बुला दे यहां पर, ये बात है भैया। तो कौन सी टाइम विद्या की आवश्यकता कब पड़ जाए पता नहीं चलता, इसलिए यहां हंसों ने उससे कहा कि भैया तुम्हारा सदा भला हो, तो ऐसे वे वहां से चले गए निष्फल कर देने। यार मिले वृंद आदु जनवंशा, हंस अपने स्थान पर चले गए। अद्भुत कला देखता साहा, उदय सूर तद संत प्रवाह, शीप समीतर मुक्ता दर्शे, अकर्ण कर्ण राम जी वर्षे, पुरपत नगर सबे चल आया, अद्भुत राम जना गत माया। जब हंस वहां से उड़ करके चले गए, शाम पड़ी थी, रात बीती, प्रभात काल का समय हुआ, जिस समय पक्षियों को चुग्गा डालते हैं। नेमीचंद बाहर निकले नियत स्थान पर चुग्गा डालने के लिए, तो वहां पर जिस पेड़ के ऊपर हंस बैठे थे उस पेड़ के पत्तों को देखा, पेड़ के पत्तों को देखा तो सारे के पेड़ के पत्ते थे वो सब सीपी के समान बन गए उनके, पत्ते जो सीप बने हुए हैं और सीप बने हुए हैं उनमें देख ऊपर चढ़ करके हाथ लगाया तो प्रत्येक सीप में मोती भरे हुए हैं। एक एक सीप में पत्तों में मोती लगे हुए हैं। वहां सीप समी तर मुक्ता दर से अकर्ण कर्ण राम जी बरसे, जो नहीं होने वाली बात भी चरितार्थ करके दिखा देने वाले हैं, ऐसे राम जी महाराज ने अनोखी लीला की। और जो ही उन्होंने उस सीप के हाथ लगाया कि सीप में से निकलने वाले मोती और जमीन के ऊपर इकट्ठे हो गए, बरस गए। बोर को पकड़ के हिलाते हैं जैसे बोर नीचे जमीन पर गिरते हैं, इसी प्रकार पेड़ से मोती बरस गए नीचे। मोती बरस गए, चारों तरफ मोतियों का ढेर लग गया। ये पता लगा लोगों को, अरे देवीचंद के यहां पर तो पेड़ से मोती पैदा हो रहे हैं। अरे क्या बात बता रहे हो, मैं देखूंगा। चलो वो उसने जाकर के देखा तो वास्तव में मोती। उसने दूसरे लोगों को कहा, उसने आगे कहा, पूरे नगर में चर्चा फैल गई, लोगों का भीड़ का हुजूम इकट्ठा हो गया। सुनते सुनते राजा के कानों में ये बात गई तो राजा भी चल करके वहां चला आया। पुरपत नगर सबे चल आया, अद्भुत राम जनागतम आया। ये राम जी के लीला अनोखी है भैया, पता नहीं किस समय क्या कर देते हैं। आखिर में जितने भी मोती थे सब लोगों के सामने राजा ने कहा, भाई कितना इनका वजन करके बताओ। सब मोती इकट्ठे करके उनको कांटे के ऊपर तोला गया तो तोलने पर दूनो तोल उतरे जाई, प्रकट भयो जस जगमाई, परम सतगुरु भगत भगता भारी, नमस्कार ताके बलिहारी। उनका वजन 5 शेर वजन निकला बराबर, दुगुना वजन। 2.5 शेर तो उनको दिया खिलाया और 2.5 शेर का हो गया 5 शेर, दुगुना तोल ब्याज। तो भाई जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान में? दुनिया भी मजदूरी देती है तो भगवान वो ब्याज क्यों नहीं देंगे? उनके प्रति सद्भाव विश्वास होगा तो अवश्य होता है। परम सतगुरु भक्ता भारी, नमस्कार ताकि बलिहारी, ऐसे गुरु महाराज में जो भक्ति भाव रखने वाला है उनको नमस्कार करता है, उन्हें बार बार बलिहारी है, बार बार उन्हें धन्य है, उन्हें बार बार वंदन है, नमस्कार है। इस प्रकार देवीचंद का जीवन केवल भगवत भक्ति परायण होकर के बाद में सेवा में जीवन लगा रहा, निष्काम भाव से सेवा करते रहे। पति पत्नी दोनों ही खूब भगवान की भक्ति करना और अतिथियों की सेवा करना, इसमें उनका मन लगा रहा। जीवन भगवत भक्ति प्रायण होकर के अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहज भाव से लेकिन निष्कपट भाव से निश्चल भाव से सेवा चाकरी की जानी चाहिए। एक संतों के विश्वासी दूसरे राजा की और बात बताते हैं। धुरंधमान नामक एक राजा हो चुका है, वो इस संतों का बड़ा भारी भक्त था। उस राजा की माता थी वो बड़ी ही हरिभक्ता थी। संतों की गुरु सेवा करना, भगवान की निष्ठा रखना। अब उसने माता पूजन दूर कराई विजय सुदन बाब भाई, राजा होकर के भी उसने ये बकरा वगैरह की बलि होती है इसको बंद कर दिया। देवी की पूजा जो कि बलि का सेवन करती है ये उसने बंद करा दिया कि नहीं ये कभी नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत हत्या है, बड़ा भारी पाप लगा करता है। उसके गुरुजी थे स्वरूपाचार्य जी, जो जीवों के रक्षक जीव दया पालन करने वाले स्वरूपाचार्य जी महाराज। अब इस राजा ने उन गुरु महाराज को गुरु बना करके उनका आश्रय ले लिया। जैसा उन्होंने धर्म मार्ग बताया उस मार्ग को राजा ने जीवन में उतारा। राजा की माता ने भी उसी धर्म को अपने जीवन में उतार दिया। एक बार की बात है, उन गुरु महाराज की इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। उस समय धर्म रूप माता चित आयो, तीर्थ कर्ण मनोरथ आयो, सुतको कयो मेल संगसामी, पुष्कर नाय धर्म सिद्धगामी। इधर माता जी की इच्छा हुई कि मैं भी तीर्थ यात्रा करूं और बेटे को साथ में भेज दो, अच्छा रहेगा, संतों के साथ में जाएंगे। बोला अपने पोते को साथ में भेज देता कि इसकी भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी, पुष्कर जगह ये प्रवास करेंगे पुष्कर यात्रा का। इन महात्मा जी के जगह जगह क्षेत्र हैं, स्थान संतों के परिचित स्थान है, तो वहां संतों के यहां जाएंगे तो सत्संग का लाभ मिलेगा, संतों की सेवा का मौका मिलेगा और इस प्रकार आसानी से इन संतों के साथ में तीर्थ यात्रा हमारी हो जाएगी। विक्रम नामक वो बालक जो था वो अपने माता का निज भक्त था। विक्रम मात बाल निज भक्त, बालक की रुचि माता के प्रति बड़ी निष्ठा थी, दादी जी के प्रति निष्ठा भाव रख लगा। अब इच्छा हो गई तो उसने कहा अच्छी बात मैं चलूंगा साथ में, जन परमार्थ कारण मुक्ता। उसने कहा चलो तो संतों ने कह दिया चलो भाई अच्छी बात है, संग चले पुनः आज्ञा मोई। इधर तो एक तो चलने की इच्छा थी और दूसरे में गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, चलो तो चल दिए। पुल सुनमंद झुलारू तो ही एते वचन करे जन संगा, गावन गावत गावन भगत किसी भी तिरंगा, ब्रह्मा मान शिष्ट समेता बैठे संग भोजन हरिता। नागवार जल किया स्नानम, कुंड अलोक देवनी जानम, कर ग्रह धका देत जन जाई, नीर धूर बिच प्राण झुलाई। अब संतों के साथ में पुष्कर जी पहुंच गए। पुष्कर में कहां कहां कौन से पवित्र तीर्थ स्थल है ये हरेक को मालूम नहीं, संतों को मालूम थे इसलिए संतों के साथ में घूम फिर करके माता जी ने और उनके पोते ने अच्छी प्रकार से तीर्थ यात्रा की, वहां पर भ्रमण किया। तो वहां का जो पर्वत मुख्य पर्वत है नाग पर्वत, उसी नाग पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की तपस्थली है नाग पर्वत, वहां पर इसीलिए पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का केवल पूजन स्थल है, और कहीं भी ब्रह्मा जी के मंदिर दुनिया में नहीं बनते बने नहीं है, और वो मर्यादा शास्त्रों की ऐसी बढ़ी हुई है कि केवल पुष्कर में ही जहां उनके तपस्या की है वहीं पर उनके पूजन का स्थान रहेगा, बाकी जगह पूजन स्थान नहीं रहेगा। वो विशेष कारण जो कि अपने पुत्री के प्रति आसक्ति पैदा होने के कारण से उन्हें श्राप लग गया था, उसी के फलस्वरूप पूजा उनकी बंद हुई। विष्णु और शंकर जी की जगह जगह पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं। तो वहां उस नाग पर्वत पर जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी वहां एक तालाब, लेकिन वो तालाब दो लोग तो कोई जाते नहीं, मिट्टी से भर गया था। मिट्टी से भरने के कारण से वहां पानी जो था उसमें कीचड़ हो गया। अब वो कीचड़ ऐसा है कि पास में कोई जावे तो अंदर धस जावे तो बाहर निकल नहीं सके, ऐसा कीचड़ बना हुआ है वहां पर। अब महात्मा जी अपने उस बच्चे को विक्रम को लेकर के साथ में पर्वत पर पहुंचे, घूमते घामते जहां वो तालाब था जिस जगह ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, महात्मा जी ने उस बच्चे को तालाब के किनारे ले जाकर के धक्का दे दिया उसमें नाग सरोवर में। नागवार जल किया स्नानम, कुंड अलोप देव नहीं जानो, देवताओं को पता नहीं था, ऐसा अदृश्य को धक्का दे करके उसमें गिरा दिया। नीर धूर बीच प्राण झुलाई, पानी और मिट्टी के बीच में वो बालक अंदर पड़ा और धसते 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 अंदर चला गया, मृत्यु हो गई उसकी। डार दियो देवता की तीरा, अब जो कुछ उसके पास में गहना वगैरह था वो तो सब तालाब के किनारे बाहर फटक दिया। कोई संत उसको लेकर के गहने के लिए तो कोई मारने वाला है नहीं, कोई विशेष कारण वशात ही उसे वहां पर मारा होगा, किसी को कौन पता कौन क्या जाने। अब आसन भवन आए बड़े धीरा, घर पर आ गए, मां ने पूछा भी नहीं कहां पर है वो। आगे चल करके जब घूमते फिरते वापस तीर्थ यात्रा करने के बाद घर आए तो अपने बेटे से मां ने ये सारी बात बताई कि गुरु महाराज ने जो बेटा इनके साथ में भेजा हमने, उस बच्चे को वह ले जाकर के नए वाले में क्या किया, उसको मार दिया, अब क्या हुआ पता नहीं। तो ये बात सुनकर के दुरंतमान नामक जो राजा था वो राजा ने उनके प्रति श्रद्धा को कमी नहीं किया। देखो मेरे पोते को मार दिया, ऐसा साधु किस काम का, इसको दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ऐसा मन में कोई भाव नहीं आने दिया। वो इसी प्रकार सहज भाव से रहा, अपनी माता से कहने लगा, माता जी उनकी गति तो वही जाने, अब वो मरा है तो अपनी मौत से मरा होगा, अपने को क्या पता, और संतों ने किया तो उनकी गति लीला है, कौन जाने क्या कारण था, अपने को क्या पता, जो हुआ सो बड़े हुआ है। जिन गुरु धर्म ए विद कहिए, सदगुरु चरण शरण ग्रह लइए, हमें तो अपने गुरु धर्म को निभाना है, यही हमारे गुरु महाराज है, संसार सागर से पार करने वाले हैं, इनके आश्रय से ही हमारा जीवन का उद्धार होगा, इसलिए इनके प्रति कभी भी मन में दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। फल त्यागंजन क्रोध संगाता उल्टा सुलट कर्ण गुरु ज्ञाता, अबे उसने एक तो फल आशा त्याग दी और क्रोध का साथ छोड़ दिया, क्रोध नहीं आने दिया अपने दिल में, तो उसके फलस्वरूप गुरु महाराज उल्टे का सदा सीधा कर दिया करते हैं, है उल्टा लेकिन उल्टे का काम नाम भी सीधा बना देते हैं, इसलिए उल्टा सुलट कर्ण गुरु ज्ञाता। गुरु महाराज अगर हमारे जीवन में कोई उल्टा काम है, विपरीत काम है, तो उसको वे कृपा करके सीधा कर दिया करते हैं। नृप की लज्जा जग में राखी, सिखा धर्म कन राज दुरारी, राजा की लाज यज्ञ में जो महापुरुषों ने गुरु महाराज ने कृपा करके रखी थी, नरपत ऊट चरण गए लीना, मनवच कर्म काज अब कीना। उसी समय दुरंदमान राजा ने जाकर के अपने गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया। आज हमारा पातक दूरा, और प्रणाम करके के महाराज आज मेरे सारे पाप दूर हो गए, आज बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। अब वो तो गुरु जी देखे कोई न कोई और बात है, अगर पता चले तो उसको क्या जवाब देंगे, लेकिन वो कह रहा है युद्ध में पड़त कंद, जात में अनेक फंद, गिरत लरत दंद आज काज सिद्ध ही, जना को ऐसो प्रभाव तारण सदाई चाव, मेटना दूजी उपाव भगत राज तद ही। महात्मा जी को प्रणाम करने के बाद राजा कह रहा है कि महाराज मुझे उस बच्चे के विषय में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शायद कभी लड़ाई होती तो लड़ाई में मारा जाता तो किससे पूछते बताओ, लड़ाई में मारा जाता तो वह मर गया, जैसे मर गया तो मर जाता है, यहां भी वैसे मर गया होगा। जात में अनेक बंद, और ऐसे जाति में कुटुंब परिवार में भी कभी आपस में कड़े होकर के भाई बंधुओं के द्वारा भी मारा जा सकता था, वो भी हो सकता था कि नहीं, तो उसमें कौन क्या हम उसका मुख देख सकते थे, उसमें नहीं देख सकते थे। तो अब गिरत लड़त दंद आज काज सिद्धि, तो लड़ते करते हो और टुकड़े उसके बोटी बोटी हो जाती, तो आज मेरा काम सफल हुआ कि आप संत महापुरुषों के सानिध्य में उसकी मृत्यु हुई है, उसका तो कल्याण हो गया बेचारे का। उल्टी बात को सीधी करना महापुरुष विचार करते भैया, अपन तो थोड़ी बात के लिए तूल देते हैं वो बात को बढ़ाने के लिए, लेकिन वे समझदार आदमी बढ़ती बात को रोकना चाहते हैं। काज आज सिद्धि, आज मेरा मनोरथ सफल हुआ क्योंकि सत्पुरुषों के सामने उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करते हुए गया है, इसलिए कभी उसकी दुर्गति होने वाली नहीं है। जना को ऐसो प्रभाव उतारने सदा, क्यों कि संतों का ऐसा ही प्रभाव है, जीवों का कल्याण करना ही वे चाहते हैं, दूसरी कोई धारणा उनके दिल में है नहीं, तभी तो भक्ति का राज्य सदा कायम रहता है, सदा के लिए अडिग रहता है। संसार का राज्य बदल जाता है पर भक्ति का राज्य सदा कायम रहता, कभी बदलने वाला नहीं है। संत कृपाल भया चिन्हमाई, आप सूझ आत्म दिखलाई, और फला रहित निर्गुण पद दीनो, राजा वास ब्रह्म में कीनो, जन पावन ऐसे करे, चरण पूज मन शुद्ध, चार पदार्थ सहज में उपजे आत्म बुद्ध। संत महात्मा परम कृपालु है भैया, अपने आप में सारी बातें राजा को स्पष्ट रूप से दिखने लगी कि जो फल से रहित कामना रहित जो साधना का फल या करे, और उस फल से जिस स्थान में प्राणी जाता है उसी स्थान पर उनका जो बालक गया हुआ बैठा राजा को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। राजा का अनुभव हो गया, पहले तो श्रद्धा भक्ति से केवल जवान से बात कही, लेकिन ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की महात्मा जी ने जिस राजा को अनुभव हो गया कि वो कहीं मरा नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म स्थान में आनंदमय स्थान में जाकर के विराजमान है, जहां ऋषि मुनि विराजमान है वो स्थान उसको मिला हुआ है। ऐसे संत महात्मा भैया जीवों का कल्याण करने वाले हैं, जन पूज मन शुद्धता, जो उनके शुद्ध भाव से उनके चरणों की पूजा करता है, चरणों की पूजा करके अपना जो इच्छा के अनुसार फल प्राप्त कर सकता है। चरण अग्र रोम का ले जल ज्ञान विरंद सहस सेन दुर्लभ परे कोट सुधा ताम्रंद श्रोत शब्द तीर्थ शब्द कर स्नान फल अंत या तो मिले हम परत गुरु सेवन धिन संत। सप्त सरोवर का स्थान तीर्थ सभी तीर्थों का स्नान जो करने से फल प्राप्त होता है वही आनंद गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेने मात्र से प्राणी को सहज में मिल जाता है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानादि कई फलम गुरुरंगी अंग्री पयो बिंदु सहज संशेन दुर्लभम। एक बिंदु भी जल का चरणों चरणामृत का मिलना ये सप्त सागर पर्यंत जो तीर्थ है उनकी बराबरी वो नहीं कर सकता। जो श्रद्धा भक्ति से जाकर के उनके सामने जाता है वो उसका लाभ प्राप्त करता है। सुनी मुनि सुनि संत दर्शन जाए करे सतवाच मनोरथ पाम धरे दिन एक स्वरूप शब्द गिने पुनि और उपासक नाई बने। केवल उनके शब्द के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, एक एक पग के ऊपर जो दर्शन करने के लिए जाता है उसको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और फल पाए मिगत ये संसार के यज्ञ फल प्राप्त करने के बाद में तो स्वर्ग में जाता प्राणी, परंतु इन चरणों के यज्ञ से मिलने वाले यज्ञ के द्वारा वो परम पद मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। महाभारत में ये बात प्रसिद्ध है दुर्वासा और द्रौपदी के प्रसंग में। एक बार दुर्वासा जी वन में गए हुए थे और वन में भी कौरवों के भेजे हुए दुर्योधन के भेजे हुए गए थे। वे दुर्वासा जी वन में भ्रमण कर रहे थे, यहां पता लगा पांडवों को कि दुर्वासा जी यहां पर आए हुए हैं पास में ही हैं, तो महात्मा जी को तो साधु ने जीमता देखो चीजें हो साधु ने जीमता देखे है जन जीव हो रो बनो में गाय ने पानी पीवती देखनी चीज और चोर ने कोटीज तो देखनी चीज है अपने अलग अलग बात है क्योंकि कुछ को कैसा देखना। तो गाय पानी पीते तो इस प्रकार हम संतों को भोजन जब देखो ने संत आवे तो जिमाने चट पर कह मन में आवे कि संत आया तो भोजन कराओ क्यों आए भाई घराला ने जिमाण भूख को लागे कहीं मन भाव को नहीं रोटी माल नहीं भावे कहीं लेकिन संता ने देखकर माटे जीवन मन में आया कि संत आया तो भोजन करो भाई घरे बुलाओ तो बढ़िया भोजन कर बढ़िया माल जमाओ एक भोजन करते देखना परंपरा से चलती हुई बात है। तो मन में आई कि महात्मा जी को भोजन कराऊं निमंत्रण देने के लिए गए युधिष्ठिर जी महाराज और उन्होंने जाकर के दुर्वासा जी को प्रणाम करके निवेदन किया भगवान कुटिया पर पधारो और भोजन करो। दुर्वासा जी ने जवाब दिया कि मैं भोजन तब करता हूं जो मुझे 100 यज्ञ का फल प्रदान करता है कोई तो उसके यहां भोजन करता हूं मैं तो इति भेंट करो तो भोजन करो 100 अश्वमेध यज्ञ। अरे अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है जिसमें एक जगह खड़े होकर के चार दिशाओं में चार बाण चलाते हैं इतना सोने का ढेर इकट्ठा करो और वो खर्च हो जाए वो यज्ञ होता तब जाके। ऐसे 100 यज्ञ का फल कोई देवे तो मैं भोजन करूं नहीं तो भोजन नहीं करता। अब बेचारे विदुषी जी तो निराश हो गए क्या करें संत वो निमंत्रण देना चाहे तो भोजन करा नहीं सकते भोजन करेंगे नहीं और गृहस्थी के घर कोई संत महात्मा का भोजन नहीं होता है पास में आने पर भी तो वो घर अपवित्र हो जाता है। चिंतित होकर के उदास मन बाप मेरे को यज्ञ किए हैं नहीं निराश होकर के वापस आकर के अपने कुटिया में बैठ गए। फिर झुका करके बैठे, द्रौपदी को चिंता लगी कि आज क्या हुआ पतिदेव को। महाराज आप उदास सुन कैसे बैठे, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, टावल टोल करते रहे, आखिर में ज्यादा हट किया था बताया। देख देवी दुर्वासा जी पास में आए हुए, उनको भोजन कराना चाहता हूँ, लेकिन उनका नियम कड़क ऐसा है कि 100 यज्ञ का फल कोई भेंट करे तो भोजन करे, और मेरे हमारे यज्ञ किया हुआ एक भी है नहीं, अब क्या उनको भेंट करें, कैसे भोजन करावे, इसलिए चिंता लग गई है। द्रौपदी ने कहा अरे 100 यज्ञ के तो फल मांगा है ना, क्यों तेरे पास में कितने एक मारकन गणे है, खूब है मारकन, आप जीता चाहिए जीता, तेरे भोजन की तैयारी कराओ, मैं बुला के लाती हूं उनको, आप तैयारी कीजिए महाराज। अरे तू लाएगी कहां से, मैं ले आऊंगी, आप चिंता मत करो, वो मैं जवाब उनसे कर लूंगी अपना बुलाने का। द्रौपदी गई बुलाने के लिए, अब द्रौपदी उनके पास में बुलाने के लिए गई, दुर्वासा जी को प्रणाम करके कहा भगवान दास जी की कुटिया पर भोजन करने के लिए पधारो, पांडव आपके भोजन के लिए तैयार हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी तुझे पता नहीं, तेरे पति ने बता नहीं क्या, मेरा नियम है जो मुझे 100 अश्वमेध